ऑफिस का माहौल हवेली से बिल्कुल अलग था। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित, शांत और मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ों में बंधा हुआ था। बड़ी कांच की खिड़कियों से आती धूप सीधे विश्वनाथ की टेबल पर पड़ रही थी, जहाँ वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फाइल्स में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियाँ कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। माँ की हालत, अक्षरा की बातें और हवेली का बढ़ता तनाव। तभी दरवाज़े पर हल्की दस्तक हुई। आओ, विश्वनाथ ने बिना नज़र उठाया कहा। दरवाज़ा खुला और शामली अंदर आई। उसके चेहरे पर हमेशा वाली चंचलता नहीं थी, आज उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। विश्वनाथ जी, उसने धीरे से कहा, माँ कैसी हैं अब? विश्वनाथ ने स्क्रीन से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ गया। अब ठीक है, बुखार थोड़ा कम हुआ है, उसने कुर्सी से थोड़ा पीछे टिकते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस की वजह से हालत बिगड़ी थी, अब उन्हें बस आराम चाहिए। शामली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और हवेली में? उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और फिर सब कुछ बता दिया। सुषमा देवी की बातें, माँ का डर और अक्षरा को लेकर उनकी चिंता। जैसे जैसे वो बोलता गया, शामली का चेहरा थोड़ा थोड़ा उतरता गया। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई, होठों की मुस्कान गायब हो गई। विश्वनाथ ने तुरंत ये नोटिस किया। शामली, उसने नरमी से कहा, इधर आओ। वो कुछ पल खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। विश्वनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। शामली थोड़ा चौंकी, लेकिन विरोध नहीं किया। विश्वनाथ ने धीरे से उसके माथे पर आ रहे बिखरे बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियां बेहद कोमल थीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सब सिर्फ तब तक है जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, और तुम हवेली में, समझी? शामली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आवाज स्थिर थी। मैं जानती हूँ, उसने धीमे से कहा। आप जो कहते हैं वो करते हैं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। एक पल रुककर उसने नजर झुका ली। मुझे बस माँ की चिंता है, अपने माता पिता को उस हालत में देखना बहुत बुरा लगता है। उसकी आवाज हल्की भर्रा गई। उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी। उसकी ये बात जैसे सीधे विश्वनाथ के दिल पर लगी। उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शामली ने भी एक पल की झिझक के बाद फुद को उसके सीने से लगा लिया। ऑफिस की सारी आवाजें जैसे उस पल के लिए थम गईं। विश्वनाथ ने उसके सिर पर हल्का हाथ फेरते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ ही हो मेरी जान। शामली की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई, जैसे उसे इसी भरोसे की जरूरत थी। कुछ पल तक दोनों वैसे ही खड़े रहे बिना कुछ कहे। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों थोड़ा अलग हुए। विश्वनाथ ने तुरंत खुद को संभाला। कम इन। दरवाजा खुला, उसकी सेक्रेटरी अंदर आई, हाथ में कुछ फाइल्स और टैबलेट लिए। सर, ये आज की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। शामली तुरंत उठकर थोड़ा साइड में खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को फिर से सामान्य करने की कोशिश की। विश्वनाथ ने फाइल्स ली और जल्दी से उन्हें देखने लगा। ओके, 15 मिनट में मीटिंग सेट करो, उसने कहा, फिर शामली की तरफ मुड़ा। और हाँ, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की जो नई डिजाइंस थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शामली, तुमने वो डिजाइन पूरा किया? शामली ने खुद को पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में लाते हुए सिर हिलाया। हाँ, पूरा कर लिया है, उसने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले खुद देखें, कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। विश्वनाथ की आंखों में हल्की दिलचस्पी आई। अच्छा, क्या नया? शामली आगे बढ़ी, टेबल पर अपना फोल्डर रखते हुए बोली। इस बार मैंने ट्रेडिशनल राठौर पैटर्न को मॉडर्न टच दिया है, थोड़ा फ्यूजन बनाया है, रॉयल भी लगे और मार्केट में यूनिक भी। विश्वनाथ ने फोल्डर खोला। पहला डिजाइन देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पेज के साथ उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। इम्प्रेसिव, उसने धीरे से कहा। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये ब्रांड की नई पहचान बन सकती है। शामली ने हल्की राहत की सांस ली। मैं चाहती थी कि राठौर टेक्सटाइल सिर्फ नाम से नहीं, अपने काम से भी अलग दिखे, उसने कहा। विश्वनाथ ने फाइल बंद की और उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ सोचती नहीं हो, करके दिखाती हो, उसकी आवाज में गर्व साफ था। सेक्रेटरी ने बीच में कहा, सर, अगर ये डिजाइन फाइनल है तो हम इन्हें अगले वीक के लॉन्च में शामिल कर सकते हैं। विश्वनाथ ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ यही जाएंगे। फिर उसने शामली की तरफ देखा, तैयार रहो, ये कलेक्शन हमारा गेम बदल सकता है। शामली के चेहरे पर पहली बार हल्की सच्ची मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अब भी एक हल्की चिंता छिपी थी, हवेली की, रत्ना देवी की और आने वाले समय की। ऑफिस में काम फिर से शुरू हो गया था, लेकिन दोनों के दिलों में जो कुछ चल रहा था वो अभी भी अधूरा था, और शायद आने वाले वक्त में वही अधूरापन एक नई कहानी की शुरुआत बनने वाला था। दोपहर की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। रत्ना देवी अब थोड़ी संभली हुई थी, सिरहाने टिक के बैठी थी। पास ही अक्षरा चुपचाप बैठी थी, उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई, चेहरे पर अनकही चिंता साफ छलक रही थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अक्षरा ने हिम्मत जुटाई। माँ, उसकी आवाज हल्की कांपी, विश्वनाथ मुझसे शादी करेगा ना? उसने धीरे से रत्ना देवी की तरफ देखा, जैसे उस एक जवाब में उसका सब कुछ टिका हो। रत्ना देवी ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में डर, उम्मीद और प्यार सब एक साथ था। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। हाँ करेगा, उन्होंने धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा। वो तुझे ही अपनाएगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अक्षरा की आंखों में हल्की नमी आ गई, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने सिर झुकाकर रत्ना देवी के हाथ को और कसकर पकड़ लिया। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु अंदर आई, हाथ जोड़कर बोली, अक्षरा जी आपको मौसी जी अपने कमरे में बुला रही हैं। अक्षरा ने चौंककर उसकी तरफ देखा, फिर एक पल के लिए रत्ना देवी की तरफ। कमरे का माहौल फिर से हल्का सा गंभीर हो गया।